भगवत गीता के 13वें चैप्टर के 13 चैप्टर की चर्चा कर रहे थे। कुछ मेरे साथ मिलकर सब बोलिए, तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत्। जरा एक हो रहा है, इसको कम कर लीजिए। सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासे नमे श्रणो तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत्। सचयो यत्प्रभावश्च तत्समासे नमे श्रणो। वो जो क्षेत्र है, द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है, शरीर है, वो कैसा है, उसके क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं, विकार है, और वो कहां से पैदा होता है, कहां से शुरू होता है, वो किसके इन्फ्लुएंस में रहता है, वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो सब मैं तुम्हें जिस्ट के रूप में, संक्षेप में मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम सुनो। ये हमने पिछले बार थोड़ी सी चर्चा की थी। आगे देखिए, ऋषिभिर् बहुधा गीतम् छन्दोभिर् विविधे प्रथात् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। दोबारा, ऋषिभिर् बहुधा गीतम् छन्दोभिर् विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। कृष्ण ने कहा, जिस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, द फील्ड एंड द नोअर ऑफ फील्ड, दोनों के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो वैसा कोई नई चीज नहीं है। हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी सुंदर ट्रेडिशन रही है। आप सुंदर कहें, यूनिक कहें, जैसे भी कहें, वो ट्रेडिशन ये है कि जो कि मॉडर्न कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, वो है कि आप कोई भी शास्त्र देखेंगे, कोई भी आचार्य देखेंगे, जो कुछ नई बातें बोलता है, जो कुछ बोलता है, लिखता है, कोई भी ग्रंथ देखिए हमारे पुराने शास्त्रों में, उसमें खास बात आएगी। उसमें शुरू में ये बता दिया जाएगा कि ये मैं कोई यूनिक बात आपको नहीं बोलने जा रहा हूं, ऑल्दो इट्स ए यूनिक थिंग, जो कुछ वो बताने जा रहे हैं, कोई भी ऋषि बता रहा हो, वो उपनिषद का हो, गीता का हो, दर्शन शास्त्र का हो, कहीं का, किसी भी अर्थशास्त्र का हो, नाट्य शास्त्र, कोई भी किसी भी फील्ड का आचार्य हो, जब वो कुछ लिखता है, वो पहले वो क्लैरिफाई करता है कि ये मैं पहला आदमी नहीं हूं जो मैं कुछ ये बातें बताने जा रहा हूं। ये बातें तो पहले से कितने लोगों ने, कितने ऋषियों ने, कितनी चर्चाएं हुई हैं। बड़े बड़े मजे की बात है कि उस आचार्य से, उस किताब से पहले उसका रेफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर वो राइटर लिखता है। वो हमारी ट्रेडिशन है कि ये जो मैं कहने जा रहा हूं, ये मेरा अपना कोई ओरिजिनल थॉट नहीं, इससे पहले कितने लोगों का विचार ये रहा है। इसका ठीक अपोजिट आज है, 50 चीजें पढ़ के अपना एक नए बुक लिखते हैं और उसका फिर पेटेंट कराते हैं। इसलिए मेरा अपना यूनिक ने, ये पहली बार ये मैं विचार आपको दे रहा हूं, इसको कोई पढ़े, इसको कोई कोट करे, इसका कोई यूज करे, तो उसका कमीशन मुझे आना, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। पतंजलि योग दर्शन पहली बार लिखा, योग दर्शन से पहले तो कोई योग दर्शन किताब है नहीं। पतंजलि खुद लिखते हैं कि ये मेरा कोई यूनिक विचार नहीं है, ऐसा हमने सुना है। जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं कोई उसका प्रथम आचार्य नहीं, आई एम नॉट द फर्स्ट ऑथर ऑफ दिस बुक। पर योग के नाम पर आप कमाल की बात देखेंगे, यूरोप में, अमेरिका में सैकड़ों योग पोस्चर्स, यू मेडिटेशंस पेटेंट हैं। उनको आप करा नहीं सकते जब तक आप उसको आप कमीशन ना दे। ये वेस्टर्न कंसेप्ट है। जिसने योग शुरुआत की उसने ये दावा किया कि ये मेरा ओरिजिनल थॉट नहीं, पर उसको नकल करके जिसने दूसरी भाषा में रखा वो कहता है ये मेरा ओरिजिनल थॉट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप में से किसी को उपनिषद पढ़ने का शौक हो, 12-13 उपनिषद हैं, हर उपनिषद में आपको एक छोटी सी लाइन मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तत्विच चक्षिरे। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल नई बातें आपके सामने रखेगा, बिल्कुल ताजा, जो फ्रेश, जो पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, उपनिषद की वो बातें आपको मिलेगी, जो उपनिषद से पहले दुनिया के किसी भी ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी उपनिषद का ऋषि उसमें लिखता है, हर उपनिषद में कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइन मिलेगा। ऐसा हमने उनसे सुना है, उनसे जिन्होंने हमें कहा है। मतलब ये कोई मेरा अपना विचार नहीं है। तो स्वामी दयानंद भी, जो आप सत्यार्थ प्रकाश कभी आपको मौका मिले पढ़ने के लिए तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, कितनी हजार सालों की जो मिसपरसेप्शन से उसको आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बावजूद भी वो सैकड़ों बार सैकड़ों जगह लिखते हैं, इनमें एक भी विचार मेरा अपना नहीं है। वेद से लेकर जैमिनी तक ऋषि मुनियों ने शास्त्र में जो लिखा, मैं बस आपके सामने सरल भाषा में रख रहा हूं, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये है भारत की विद्या का परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नॉलेज, जो सब नई चीजें देने के बावजूद भी अपने आप को उसके ऑथरशिप के लिए दावा नहीं करते हैं, क्लेम नहीं करते हैं। और जिस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, हर छोटी छोटी चीजें इवन दूसरों का चुरा कर भी अपने नाम पर छाप के उसमें पेटेंट कर देते हैं। आजकल लड़ाइयां चल रही है बड़ी, भारत सरकार को बड़ी प्रॉब्लम होती है। साल में ऐसे दर्जनों चीजें हैं किसी ना किसी देश में, अमेरिका में, यूरोप के किसी ना किसी देश में पेटेंट कर देते हैं। हल्दी की क्या यूज है हेल्थ के लिए, उसको पेटेंट कर दिया। वो इमली का क्या यूज होता है, पेटेंट कर देते हैं। तुलसी का क्या यूज है, तुम्हें क्या पता, 5000 साल पहले तक तो तुम्हें तुलसी क्या चीज पता ही नहीं था, आज पेटेंट कर देते हो तुलसी के, हमने निकाला है। फिर क्या होता है, क्योंकि इंडियन लोग तो अपनी चीजों को बड़ा बकवास, पोंगापंथी, पुराना चीज ही समझते हैं, बस उनको इंजीनियर बनना है, वो भी कोई इनोवेशन के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। डॉक्टर बनना है कोई नई चीज निकालने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए, इंडियन लोगों की आदत है। तो उनको तो अपनी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब दुनिया भर में पेटेंट होने लगता है तो भारत सरकार परेशान होता है, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो फिर वो ढूंढते हैं, अब कहां गए वो जो वो डायनासोर के जमाने के पुराने पढ़े लिखे लोग, कहां है उनको ढूंढते हैं। आयुर्वेद वाला, संस्कृत वाला ढूंढो भाई, ये जो पुरातत्व वाले सब कहां गए सब। फिर एक एक को ढूंढते हैं, फिर उनको भेजते हैं, जाओ भाई जर्मनी में लड़ो, कोर्ट में, अमेरिका में लड़ो, लाओ कहां वो शास्त्र में लिखा है, ढूंढ ढूंढ के लाओ। फिर वो बेचारे तब उनको याद आती है भाई यहां इनकी अब जरूरत पड़ेगी, तो उनको भेजते हैं अमेरिका में, कोर्ट्स में, जर्मनी में, फ्रांस में, लड़ाई करने के लिए। देखो ये तो हमारे 5000 साल पुराना चीजें हैं, ये 4000 साल पुराना है, 3000 साल, आप क्या कहते हो ये नई चीजें, इसको पेटेंट करोगे। लड़नी पड़ती है, लाखों करोड़ों डॉलर भारत सरकार को आजकल खर्च करनी पड़ती है ये छोटी छोटी चीजों से लड़ने के लिए। और आपको मजेदार बात है, योग के जो पोस्चर्स होते हैं, आसन होते हैं, प्राणायाम के जो अलग अलग जो मॉडिफिकेशन है, ध्यान के जो, उस पर भी आपको पेटेंट मिलेगा। कुछ तो इंडियन लोग भी आप धीरे धीरे यहां पेटेंट करने लग गए, ये हमारा, हमने ये इनोवेट किया है चुरा करके 10,000 साल पुरानी विद्या को। कृष्ण क्या कहते हैं देखिए, जिस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं कृष्ण शुरुआत कर रहे हैं, और ये हमारी ट्रेडिशन है जिसको कृष्ण फॉलो करते हैं, वो क्या ट्रेडिशन है? जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो कुछ नई चीज नहीं है, तुम पहली बार सुन रहे होगे, पर ये नई चीज नहीं है। ऐसा तो ऋषि भीर बहुधा गीतम, ऐसा तो ऋषियों ने बहुत कहा है, वेदों में कहा है, अलग अलग तरीके से कहा है, अलग अलग शास्त्रों में कहा है, अलग अलग दर्शन शास्त्रों में कहा है। मैं तो क्योंकि तुम्हारे लिए मैं, तुम पहली बार सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए मैं ही ऑथर बना, इसीलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, मैं कोई इसका यूनिक व पहला फर्स्ट राइटर ऑथर या टीचर नहीं हूं। दैट नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी जिसकी चर्चा हम करेंगे, और द नोअर ऑफ एक्टिविटीज इज डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस सेजेस इन वेरियस वेज, इट हैज बीन स्टेटेड सेपरेटली इन डिफरेंट वैदिक हिंस एंड ऑल्सो इन द कंक्लूसिव एंड रिजेंड टेक्स्ट ऑफ ब्रह्म सूत्र क्लियरली। और एक मजेदार बात, ये जो नीचे वाला लाइन देखिए, ब्रह्म सूत्र पदेश चैव हेतु मद्वीर विनिश्चित, ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ जिसमें रीजनिंग के साथ लॉजिक के साथ जो बुक को है उसमें भी इस चीज की क्लियरली उल्लेख है। हमारे जो छह दर्शन है, सिक्स स्कूल ऑफ थॉट्स, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स, छह तरह का, छह स्कूल्स हैं, छह प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, मीमांसा, वेदांत, सांख्य और योग। योग जो प्रैक्टिस करते हैं वो दर्शन नहीं है, वो तो हठ योग है, वो तो हेल्थ को ठीक करने के लिए है। एक योग अजय फिलोसफी है, वो पतंजलि का है। ये जो आसन प्राणायाम करते हैं उसका पतंजलि से कोई लेन देन नहीं है, वो हठ योग है, वो घेरंड संगीता और हठ योग प्रदीपिका उसके लिए दूसरे शास्त्र हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। जो फिलोसफी है, जो दुनिया के बारे में, अपने बारे में जो जो डीप नॉलेज देने की कोशिश करता है, डिस्कशन करता है लॉजिकली विथ रीजनिंग, वो अलग है, वो पतंजलि का योग दर्शन। सांख्य और योग दर्शन, वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये जो छह तरह के हमारे यहां दर्शन है, जो बेसिकली उसी सरल बात को जो उपनिषद में है, जो वेदों में है, जो धर्मशास्त्रों में है, जो अलग अलग शास्त्रों में है, बहुत सिंपल वे में है, ऋषियों का अपना जो रियलाइजेशन है उसको उन्होंने बड़े सिंपल वे से जो बताया उसको लॉजिकली विथ रीजनिंग पब्लिक के सामने रखने का जो काम किया वो दर्शन शास्त्रों ने किया है। हमारे धर्मशास्त्र भी शायद ये दुनिया में, ये भी एक यूनिकनेस है हमारी, हमारे जितने धर्मशास्त्र है वो अपनी बात को बड़ी लॉजिकली रखने की कोशिश करते रहे हैं। दुनिया में कम होता है धर्मशास्त्रों का लॉजिक के साथ कोई लेन देन हो। इवन जिसको आप लोग धर्मशास्त्र के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पर जानते हैं, सुनते हैं, आपको जबरदस्ती बताया गया है, उसमें भी लॉजिक का कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। एज ए हिंदू होने पर भी आपको जो सो कॉल्ड धर्मशास्त्रों को रटवाया गया, ये धर्मशास्त्र जो फॉल्स धर्मशास्त्र आपको रटवाया गया है, पर जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हैं, वो वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, कितने सारे तरह के शास्त्र हैं जिनमें से आपको हमें कभी नहीं सिखाया गया कि ये तुम्हारा धर्म। हमें तो बताया जाता है हनुमान चालीसा पढ़ो मुक्ति मिल जाएगी, वो रामचरित मानस पढ़ो मुक्ति मिल जाएगी, वो भागवत पढ़ो मुक्ति मिल जाएगी। माइथोलॉजी को धर्मशास्त्र के रूप में हमारे ऊपर थोपा गया और हम उसी को लेकर के चले। ये भी बड़ी यूनिकनेस है हिंदुओं को, क्या कि इनके पास सैकड़ों शास्त्र है और किसी हिंदू को नहीं पता होता है कि उनके पास है। ये भी हमारी कमाल की बात है जी, ये दूसरों को पता होता है। पश्चिम लोग जिन्होंने हिंदू धर्म, बियॉन्ड लॉजिक होता है, बियॉन्ड रीजनिंग होता है। लॉजिक और रीजनिंग के लिए आपकी सेंसेस एक्टिव होना जरूरी है, पर जो प्योर रियलिटी है, जो डीप रियलिटी है, वो आपके लॉजिक से बाहर चले जाते हैं। देखिए, जब साइंस में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, हमें छोटी सी लॉजिक रखी समझी कि जो मूव करता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, जो स्टेशनरी है वो मूव नहीं कर सकता, जो स्थिर है वो चलता नहीं, जो चलता है वो स्थिर नहीं है। ये लॉजिक है, कॉमन सेंस है, और हजारों सालों तक ये मानते रहे। पर जब हमने पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में, तो हमारी सारी रीजनिंग लॉजिक वहां बेकार हो गया, वो बियॉन्ड लॉजिक होने लगा। जो सेंसुअल नॉलेज है वहां तो इलेक्ट्रॉन वेव भी है और एटम भी है। एटम मतलब जो स्टेशनरी है, कण है, आखिर कण है, और वेव मतलब तरंग है, उसमें वेव होता है, तरंग मूवमेंट है, और एटम जो है वो स्टेशनरी है। पर ये दोनों एक साथ घट रहे हैं, कभी वो वेव दिखता है। तो हमने नई थ्योरी निकाली, थ्योरी ऑफ क्वांटम। जब भी आप गहरी चीजों में चले जाते हैं, आपकी लॉजिक वहां काम नहीं करता। तो तर्कों से हम कोई भी गहरी सच को नहीं जान सकते, और खास करके ये तो सिर्फ मैटेरियल वर्ल्ड है, पर जब आप अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं वहां तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, धर्मशास्त्रों में बार बार ऋषि कहते हैं, नैषा मति तर्केणापनेया। ये ज्ञान आपको तर्कों से नहीं मिलेगा, ये लॉजिक से नहीं मिलेगा, रीजनिंग से नहीं मिलेगा, ये डिबेट से नहीं मिलेगा। पर पश्चिम के ज्ञानी लोगों को, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं इंडोलॉजी के, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि इनके हर जगह लिखा होता है कि तर्क के द्वारा उसको पा नहीं सकते, पर इनका एक भी धर्मशास्त्र नहीं जिसमें तर्क ना हो, जिसमें लॉजिक ना हो, जिसमें रीजनिंग ना हो। पर ये हमेशा बोलते हैं रीजनिंग से उसको पाया ना जा सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ लोग रियलाइज करना चाहते हैं, खुद आग गर्म है, ये लॉजिक से नहीं जाना जाता है ना, ये रीजनिंग से नहीं जाना जाता, उसको रियलाइज करना पड़ता है। अब हजारों पॉइंट मेरे सामने रखो कि आग गर्म होता है, पर मेरी समझ उसी दिन आएगा, उसी मोमेंट पर होगा। वो छोटे से बच्चे को भी हो जाएगा आग गर्म है, जिस दिन उसके हाथ आग से जल जाए, आग को गर्मी लगे। ये रियलाइजेशन आपके सारे लॉजिक को, रीजनिंग को बेकार कर देते हैं। पर हमारे सारे दर्शन शास्त्र, कभी मौका मिले पढ़ने को तो पढ़िएगा, बड़े तर्कों से, रीजनिंग से, लॉजिक से भरे पड़े होते हैं। हमारे यहां मंगलवार को गीता क्लास होती है, गुरुवार को योग दर्शन क्लास होता है। गीता क्लास में 20-25 लोग आ जाते हैं, योग दर्शन में 2-3 होते हैं। नेचुरली जो बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, रीजनिंग हो, जहां आपको सर खपानी पड़े, कॉम्प्लिकेशन हो, वो फिर इतना आम पब्लिक के लिए नहीं होता है, स्वाभाविक है, क्योंकि दर्शन शास्त्र यही है। पर प्रॉब्लम है कि अगर आप लॉजिक यूज करते हो, फिर बोलते क्यों है कि लॉजिक के द्वारा उसको पाया ना जा सकता। ये वेस्टर्न लोगों को अभी तक भी नहीं समझ में आता है कि ये बोलते हैं कि तर्कों के द्वारा उसको, आत्मा को नहीं जान सकते, पर हर बात पर इनके लॉजिक दिखता है। ऋषियों को पता है कि समझ जानने के लिए तर्क नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत है, रियलाइजेशन की जरूरत है, अनुभूति से ज्ञान होता है। पर जो ज्ञान मुझे हुआ वो सबको नहीं हुआ। जब मैं वो ज्ञान आपके सामने रखूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आप इसको मानेंगे नहीं। तो आपको मनवाने के लिए तर्कों की जरूरत पड़ती है, रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, टू एक्सप्रेस माई व्यूज। आई यूज रीजनिंग्स, बट टू रियलाइज द ट्रूथ आई डोंट नीड एनी टाइप ऑफ रीजनिंग। इसलिए ऋषियों ने जानने के लिए तर्कों का सहारा नहीं लिया, बताने के लिए तर्कों का सहारा लिया। दर्शन शास्त्र जानने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहां कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सारे किताब पढ़ लेंगे, पढ़वाने के बाद आपसे वो किताब बोलेगा कि पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है, तो आप कहेंगे हमसे सारा पढ़वा दिया, गीता सारे दर्शन पढ़वा दिया, अब कहते पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। वो कहते अनुभव से फायदा ज्ञान होता है। तो फिर पढ़ाया क्यों भाई, हमें तो 2 साल लगाया, 3 साल लगाया भाई। रियलाइज करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, कुछ बेसिक एलिमेंटरी नॉलेज तो चाहिए ना। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे साइंस में, आपको थोड़ा बहुत थ्योरिटिकल नॉलेज तो होना चाहिए, सीधा आप थोड़े ही जंप मारेंगे। पर थ्योरी पढ़ने के बाद वो थ्योरी राइटर जरूर लिखेगा कि ये थ्योरी पढ़ लेने से कोई साइंटिस्ट नहीं बन जाता है ना। आप रटते रहो साइंस की फॉर्मूलाज, आप पब्लिक में कुछ वो आम लोगों के बीच में कुछ नाम भी कमा लो, पर एक्चुअली आपको रियलिटी से कोई लेन देन नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं वेद उपनिषद आदि शास्त्र ऋषियों के द्वारा जो अनुभव किया गया ग्रंथ, उन्होंने भी इसके बारे में चर्चा की। और जो शास्त्र तर्कों पर आधारित है, हेतु पर, जहां लॉजिक चलता है, जहां रीजनिंग चलता है, ब्रह्म सूत्र क्या है, वेद जो 6 तरह के दर्शन है उसमें जो वेदांत दर्शन है उसके ग्रंथ को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में जहां लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड होता है उसमें इसकी चर्चाएं मिलती है। अगले चलिए, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। जिस क्षेत्र के बारे में बात की, जो फील्ड के बारे में बात की, नोअर ऑफ फील्ड, क्षेत्र मतलब ये शरीर और इसको समझने वाला जानने वाला जो 2 चीजें हैं, वो क्षेत्र क्या चीज है, वो कैसा है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इन सब चीजों का एक एग्रीगेट है। वो क्या क्या है, महाभूतानी जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, अहंकार ईगो, बुद्धि इंटेलेक्ट, अव्यक्त द अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स, इंद्रियाणी जो 10 तरह के इंद्रियां हैं, एकम च और जो 11वां मन इंद्रिय है, और इंद्रिय गोचर द सब्जेक्ट ऑफ सेंसेस हैं। ये जो मेरा शरीर है, मैं हूं, और मेरा 2 टुकड़ा है, एक क्षेत्रज्ञ नोअर ऑफ नॉलेज फील्ड, द फील्ड इज माय बॉडी। ये जो शरीर है वो एक बहुत सारे चीजों का एक एग्रीगेट है। तो कौन कौन कंपोनेंट्स हैं शरीर में, पंचभूतानी। वैसे हमारे यहां किसी भी आम आदमी को, भारतवासी को पूछो ये भूत क्या चीज होता है, वो कहेगा रात को चलो आपको दिखाता हूं, वो वहां पर श्मशान घाट में। ये भी यूनिकनेस है जी हमारी, जो हमारे पास है उसका ठीक उल्टा सब हमें पता है। हा? बड़ी मजेदार बात है, आपके किसी भी शास्त्र में किसी भी ग्रंथ में भूत शब्द का मतलब घोष्ट नहीं होता है, भूत का मतलब इवन लाइफ होता है। आप सब भूत हैं, भूत भूत का मतलब होता है जो हो गया है, जो बना हुआ है, विच इज मेड, विच इज क्रिएटेड, विच इज बर्न इज कॉल्ड भूत। अब कोई भी गीता भी पढ़ते हैं तो गीता उठाकर देखिए, पर कोई हिंदू भूत का मतलब नहीं मानता, ये भूत से घोष्ट लेता है। मतलब इतना हम कहां से हम बिगड़ गए हमें नहीं पता चला है। चारों तरफ भूत दिखते हैं, ह्यूस्टन में आकर भी यहां भी दिखते हैं। ये बेचारे अमेरिकन ह्यूस्टन में रहते हैं, इनको नहीं दिखता, दिखता है वो जो थोड़ा ज्यादा रिलीजियस होते हैं इनके यहां के, इनको दिखना, इनको दिखना भूत दिखना का एक जस्टिफिकेशन है, क्योंकि इनके रिलीजियन में इनके जो फिलॉसफी है वो घोष्ट के बिना वो फिलॉसफी बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये पुनर्जन्म को नहीं मानते, रिबर्थ उनके लिए नहीं होता है, कर्म सिद्धांत या रिबर्थ उनके लिए नहीं है, उनका एक ही जन्म है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये समझने की, रियलिटी जानने की है, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। कौन क्या मानता है उसमें कोई हमें ऑब्जेक्शन नहीं, बट यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बिलीफ, वो क्यों मानते हैं और उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि जो कंसेप्ट है उनका लाइफ के बारे में, द सिंगल लाइफ, जब मरते हैं हम तो जब डे ऑफ जजमेंट होता है, मैं क्रिश्चियनिटी की थ्योरी के हिसाब से बताता हूं, तो डे ऑफ जजमेंट के दिन उनका ईश्वर आता है, वो उनके सन से जीसस से पूछेगा कौन है जो स्वर्ग जाने लायक हैं, तो जिन्होंने जीसस को अपना गॉड माना वही जाएंगे, बाकी तो नहीं जा पाएंगे। डे ऑफ जजमेंट के दिन, टिल दैट डे दे हैव टू वेट, उनको वेट करना पड़ता है, इसलिए उनके वहां इवन इस्लाम में भी वही कंस, उनको वो गाड़ा जाता है, उनको उसको कवर किया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी साथ जाएंगे, वो देव वो हेवन जो स्वर्ग जाएंगे शरीर के साथ जाएंगे, मर गए पर उनको वेट करना पड़ता है, उनकी वो भी आत्मा मानते हैं, पर वो रहता है कहां, रहता है ग्रेवयार्ड में, वो कब्रिस्तान में रहता है, शरीर तो गड़ा हुआ है, वो आत्मा क्या करेगी, घूमती रहती है, कभी तुम्हारे घर कभी इसके घर किसी इसमें, तो भूत होते हैं उनके वहां नेचुरली। जब तक आप इस प्रिंसिपल को मानोगे तब तक आपको भूत दिखेंगे, पर आपका कंसेप्ट तो ये नहीं है। अगर आप मानते हो कि आप भारत से हो, आप हिंदू धर्म से या वैदिक धर्म से जुड़े हुए हो, आपके कंसेप्ट में तो होता है कि आपका रिवर्थ, पैदा हुआ व्यक्ति मरा व्यक्ति, मरने का मतलब शरीर से अलग होना, और शरीर से अलग होने का मतलब पैदा होने का मतलब शरीर से जुड़ना, आदमी आत्मा अलग हुई शरीर से, दूसरे शरीर को ग्रहण किया, फिर उसको घूमने फिरने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको फायदा पहुंचाने के लिए उसके पास टाइम कब है, जबकि तो मेरा बाप भूत बन के आया 10 साल के बाद, वो तो पता नहीं कहीं 10 साल का बच्चा हुआ होगा, अगर इंसान पैदा हुआ होगा, अगर कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी कुछ बना हुआ होगा, वो 10 साल बीत गए होंगे उसको, तो तुम्हारे पास भूत कहां से आया। इसीलिए हम क्या करते हैं, मरते ही जला देते हैं, यूजलेस है, अब बदबू आता है, आपको पता है शास्त्र में रूल है कि हमारे हिंदुओं में 4 घंटे के अंदर अंदर जला देना, क्योंकि कीड़े पड़ेंगे, जर्म्स होंगे, घर वालों को फिर वो बीमारियां होंगी, और सारे जब वो बॉडी डेड बॉडी को जला देते हैं, उसके बाद पूरे 8-10 दिन तक वो जो आप मनाते हो अछूत मनाते हो, उसका एक सोशल और साइंटिफिक रीजन है कि डेड बॉडी के कारण जो जर्म्स आपके घर में फैले, इसीलिए आप दूसरों को छूना नहीं, वो नहीं करना, कहीं वो जो किसी बीमारी से मरा होगा जो भी होगा वो दूसरों तक ना जाए, आप भी खाना पीना ढंग से रखना, सारे कपड़े फपड़े धोना, सब साफ सुफ करना रखना, दैट्स द रीजन। वंस कोई गया तो गया, उस शरीर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम जला देते हैं। पर उनको रखना पड़ता है क्योंकि जजमेंट डे के दिन उनको जाना है। फिर वो आत्मा क्या करेगी, वो शरीर के आसपास घूमती है, बदमाश आदमी रहा होगा तो उसकी आत्मा बदमाशी करेगी, अच्छा आदमी रहा होगा तो आपको हेल्प करेगी। पर आपके यहां तो बदमाश बना होगा तो अच्छे वो कुछ बुरे जन्म में जाएगा, कुत्ता बिल्ली जो भी बनेगा। कुत्ता तो आजकल बड़े अच्छे जन्म होते हैं, खास करके अमेरिका में हो तो, मैं हिंदुस्तान में गाय बन जाएगी। ये पूजने वालों की गाय बड़े दर्दनाक दर्द देते हैं जी, पूजने वाले गाय, पूजने वाले गाय को सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। जिंदगी भर गले में रस्सी बांध के रखते हैं, और शहरों की गायों की तो और दुर्दशा है जी, छोड़ देते हैं रास्ते में, कचरा खाती है, शाम को डंडा लेकर हड़का कर ले आते हैं, दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं गाय माता की जय हो। और वो साइकिल गाड़ी चढ़ जाती है, एक्सीडेंट होती है, पता नहीं क्या क्या। हिंदुस्तान के कुत्तों की भी बड़ी बड़ी बुरी हालत है। तो अच्छा जन्म में अच्छा कर्म किया तो अच्छे जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा, तो बीच में बचा कहां। पर हम मानते क्यों मानते, किसकी बेस पर मानते, किसी को नहीं पता, ना आपको पता, ना आपके पंडितों को पता, ना उनके पंडितों के पंडितों को पता, बस मान रहे। कौन से सोर्स से मान रहे किसी को नहीं पता। एक अद्भुत कम्युनिटी है ये, जो अपनी अच्छाइयों को बड़े प्यार से भूल जाता है, दूसरों को बुराइयों को बिल्कुल आंख मूंद करके एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे वो उसका एंसेस्टर ने यही सिखा कर गया। भूत का मतलब जो कुछ क्रिएट हुआ, जो पैदा हुआ, हम सब भूत हैं। भू और एक शब्द हमारे यहां चलता है ना भूत के साथ, प्रेत, ये भी समझ लीजिए, साथ साथ फिर आगे चलेंगे। बीच बीच में कुछ आपके जनरल नॉलेज भी हो जाना चाहिए, हो सकता है लाइफ में आपके आपके नहीं तो आप अगर सुधरे हुए हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सुधार सकते हैं, क्योंकि लोग अमेरिका में भी आकर जादू टोना वाले ढूंढते हैं कौन हमारे घर में जरा झाड़ फूंक कर दे। कभी कभी आश्चर्य होता है लोगों की पढ़ाई लिखाई पर, खूब पैसा कमा लेते हैं पर अकल कहां मर जाती है पता नहीं। प्रेत शब्द का अर्थ होता है जो मर गया, जो चला गया। मेरे अगर दादाजी परदादा जो भी जिनका देहांत हो गया, वो प्रेत का लिटररी मीनिंग है हु हैज गॉन, जो चला गया। जो डेड है वो प्रेत है, जो लाइव है वो भूत है। इसलिए यकीन मानिए कोई भूत प्रेत नहीं होता है, और जिसको दिखता है वो इसीलिए दिखता है कि क्योंकि वो बिलीव करता है। दुनिया में ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, ध्यान रखिए, आप जिस चीज को बिलीव करते हो वो आपको दिखेगा, जिस चीज को आप बिलीव नहीं करते हो इवन वो हो तो भी नहीं दिखेगा। आपकी सेंसेस कंट्रोल्ड होते हैं बाय योर माइंड, ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप यहां बैठे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, पर एक भी शब्द आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है। क्यों? आपका माइंड और कहीं है। आंख देखते हुए भी नहीं देखता है, ना देखने पर भी देखता है, तो इसीलिए आपको दिखता है। यहां महाभूत का मतलब होता है जो फाइव एलिमेंट्स हैं, जिनके जिनसे हमारा यह शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। याद रखिए ये टेक्निकल टर्म्स हैं। अर्थ का मतलब धरती नहीं है, मिट्टी नहीं है जिससे मेरा शरीर बना है, इसका मतलब है कि सॉलिडिटी। तो वाटर कहते हैं वो, उसका मतलब पानी नहीं है, जो भी लिक्विडिटी है वो जल तत्व कहा जाता है। तो मेरे शरीर सॉलिड चीजों से भी बना है, फ्लेश है, बोन है, स्किन है, एक्सेट्रा, लिक्विड से भी बना है, मेरे अंदर जो खून है, पानी है, जो कुछ भी है, एयर, मैं सांसें लेता हूं, मेरे शरीर के हर नर्व्स में एयर का प्रेशर है, आप इसको ऑक्सीजन कहो, आप कार्बन डाइऑक्साइड कहो, कुछ भी कहो, फायर, इसका मतलब अग्नि नहीं है, कोई भी चीज जिसके अंदर एनर्जी हो, पावर हो, जलाने की, जलने की, पावर देने की ताकत हो, आपके अंदर भी आग है, कच्चा खाना खाइए पक जाता है, और स्पेस है, आपके अंदर भी स्पेस है, तो ये सारा संसार भी पांचों चीजों से बना है, मेरा शरीर भी पांच चीजों से बना है, और उसके बाद ईगो, ईगो का मतलब यहां ये जो नॉर्मल लाइफ का ईगो नहीं, ये फिलोसॉफिकल टर्म है, ईगो का मतलब है रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां आप बोलते हो कि मैं हूं, ये जो मैंपन, हूंपन, ये ईगो है, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो डिस्क्रिमिनेट करता है, ये अंधेरा है, ये दीन है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये सफेद है, जहां से लिविंग बींग का, ये एक बींग है, एक सेंटियंट है, उसकी उसकी रिकॉग्नाइजेशन होता है। अब तीसरा है अनमैनिफेस्टेड स्टेज, ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स आप देखते हैं या शरीर देखते हैं, जब ये नहीं होता है, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, मृत्यु है, हमारे यहां मृत्यु या विनाश कोई परमानेंट एंड नहीं है, वो अपने अपने अनमैनिफेस्टेड स्टेज में चले जाते हैं, अपने शटल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं मृत्यु, उसी को हम कहते हैं विनाश, उसको संस्कृत में दार्शनिक भाषा में टर्म में कहते हैं प्रकृति। और तो शरीर पांच चीजों से, पांच तत्व भूतों से, ईगो, इंटेलिजेंस, प्रकृति और किस किस से बना है, फाइव सेंसेस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, जिसको आप ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, आपका आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्किन, थोड़ा लिखना गलत है, टच, स्किन की जगह टच लिखा है, और फाइव सेंसेस ऑफ एक्शन, जो पांच कर्मेंद्रियां जिनसे आप काम करते हो, आपका मुंह जिसमें आप बोलते हो, आपके लेग्स, पैर, आपके हाथ, आपके मलेंद्रिय, आपके मूत्रेंद्रिय, जहां से आप एक्टिविटी करते हो, वो पांच कर्मेंद्रियां है, और पांच इंद्रियों के पांच ऑब्जेक्ट हैं जिनको ये पांच इंद्रियां यूज करते हैं। जैसे कान का ऑब्जेक्ट क्या है, शब्द, कोई भी साउंड हो वो उसको रिसीव करता है, अगर दुनिया में साउंड नहीं होता तो कान भी नहीं होता, ये ईश्वर की सृष्टि है, एक साउंड नामक ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस है, जिसको रिसीव करने के लिए आपके पास कान है, आंख है, रूपों को, फॉर्म्स को जानने के लिए, जिसका भी एक फॉर्म है उसको जानने के लिए आंखों की जरूरत होती है, अब आंख से नहीं सुन सकते, बहुत सारी चीजों में साउंड नहीं है, फॉर्म नहीं है, बट यू कैन स्मेल इट, जैसे अच्छा खुशबू है कि बुरा खुशबू है आपको कैसे पता चलेगा, सिर्फ नाक से सूंघ करके, टेस्ट कैसे पता चलेगा, सिर्फ जीभ से, ठंडा है, गर्म है, अच्छा है, बुरा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसे पता चलेगा, टच से, स्किन से, ये ऑब्जेक्ट है। देन अबव द सेंसेस देयर इज द माइंड विच इज विद इन एंड विच कैन बी कॉल्ड द सेंस विद इन, उसके बाद ये सारे सेंसेस को, आपके कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इन सबको मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला, इनका जो मालिक है, जो ड्राइवर है, जो पीछे बैठ के चलाता है, वो है माइंड। आप जो कुछ भी हो, आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है, आपकी इंडिविजुअलिटी जो भी है, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड, जैसी आपका मन होगा आप वैसे हैं, आप जैसा सोच मन में रखते हैं आप वैसे होते हैं, ये मन ही है जो डिसाइड करता है कि मेरा आंख क्या देखे, मेरा कान क्या सुने, मेरा नाक क्या सूंघे, आप आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को यही रेगुलेट करता है। इसलिए उपनिषद में इसको चेरिएटर कहा। अगर शरीर एक रथ है, चेरिएट है, गाड़ी है, तो उस गाड़ी की ड्राइवर आपका माइंड होता है। शरीर का बाकी चीजें थोड़ा सा एक मिनट और लेकर के समाप्त करते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदारतम। बॉडी की जो अलग अलग पार्टिकल से कंपोनेंट से, उनमें अगला ये भी है इच्छा। ये सब आपके मेंटल स्टेज की चीजें हैं, डिजायर, इच्छा। किसी चीज को पाने की आप जो चाहते हैं उसको इच्छा कहते हैं। द्वेष इसका अपोजिट है। कुछ चीजों को आप डिसलाइक करते हैं, आप अपने आसपास उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसको कहते हैं द्वेष। जैसे कोई भी बीमारी नहीं चाहता है, बीमारी आते ही परेशान हो जाता है, कोई शत्रु को आसपास देखना नहीं चाहता है, जिन चीजों से आप डिसलाइक करते हैं उसको द्वेष कहते हैं। सुखम, सुख का मतलब होता है जो इंद्रियों को अच्छा लगे। ध्यान रखिए, सुख का डेफिनेशन यही है, जो आपके सेंसेस को अच्छा लगे वही सुख है। सुख वस्तु में नहीं होता है, सुख पैसे में नहीं होता है, सुख घर में नहीं होता है, सुख आपके सेंसेस में होता है। वो घर कल तक जो आपको अच्छा लगता है, आज आपको काटने के लिए दौड़ता है, आप कहते हैं ये घर बेच दूंगा, मैं दूसरे घर में जाऊंगा। कल तक तो घर था, अच्छा लगता था, आज क्या प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि अब आपको अच्छा नहीं लगता। कल तक घर में जो सुख, जो आपको मजा आ रहा था, आपको घर ऑफिस से दौड़ते थे मैं घर पहुंचू, आज ऑफिस से आने को मन नहीं करता है। लगता है ऑफिस के बाद मैं और कहीं चला जाऊं, रात को 12 बजे आते। घर तो वही है, कल तक तो आपको दौड़ने के लिए इच्छा थी, अब तो आने को मन नहीं करता। सेंस को कल तक अच्छा लगता था, आपके इंद्रियों को आज अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगे वो सुख है, जो ना लगे वो दुख है। कल तक जो चीज आपको अच्छा लगता था आज आपको बुरा लगता है, वो चीज खराब नहीं, आपके सेंसेस चेंज हो चुके हैं। संघात, और इन सब का जो एग्रीगेट है, जो ओवरऑल बॉडी चेतना, और जब ये सारी चीजें मन बुद्धि इंद्रियां इच्छा द्वेष सब मिक्स हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या पैदा होता है रिएक्शन में? चेतना की कॉन्शसनेस, आपकी लाइफ जिसको कहते हो कि ये मेरा जीवन है। ये जीवन क्या है? जीवन एक रिएक्शन ऑफ मिक्सचर, जिसमें आत्मा है, शरीर है, और शरीर के आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार जो आपने पढ़ा, इन सबका जो मिक्सचर है, उसके जो रिएक्शन में जो पैदा होता है उसको आप चेतना कहते हो, कॉन्शसनेस कहते हो। और ध्रुति जो कन्विक्शन है, उसके बाद आपके अंदर जो कन्विक्शन होता है वो सारे मिला के शरीर कहलाता है। यही है क्षेत्र, फील्ड। इसके बारे में थोड़ी सी आगे और चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।